इसके लिए ईश्वर की उपासना शास्त्रों में कई प्रकार की बतलाई, कई प्रकार की यह परमात्मा की उपासना कि जो कुछ नेत्रों से दिखे है वो सब भगवान को स्वरूप, जो कुछ नेत्रों से दिखे है वो भगवान को स्वरूप। इस प्रकार से थी भगवान को स्वरूप मानकर यदि उपासना की जावे तो बड़ा पाप। यह कहे कि नेत्र से दिखने वाला जो पदार्थ है उसमें दो बुद्धि हो जाती है, अनुकूल और प्रतिकूल, तो सब में संबुद्धि नहीं रहती, होनी तो संबुद्धि चाहिए, संबुद्धि से ही मुक्ति हो चाहे जैसा हो। ऐसे यदि ज्ञान मात्र पदार्थ में संबुद्धि नहीं हो तो एक देश में संबुद्धि कर लेनी चाहिए। एक देश में कैसे कि कानों से जो बात सुने उसमें संबुद्धि कर ले, सब देश तो ब्रह्म को स्वरूप है और वो सम है, अरे एक ही है, शब्द में कोई फर्क नहीं, शब्द ब्रह्म इसी उपासित करे कि सब देशो ब्रह्म है, ऐसी उपासना करे कोई भी शब्द सुनाई दे बस शब्द में ब्रह्म मान करके की उपासना करे कि कानों में जो कुछ सुनाई दे वो सब वही ब्रह्म को वहीं को ध्यान करे, कानों में जो सुनाई दे मैंने ब्रह्म समझ करके अरे की उपासना करे या ध्यान करे कि मैं एकांत में बैठ करके ब्रह्म को ध्यान करूं। बोले बहुत ठीक है कि अरे ब्रह्म को कैसे स्वरूप को, बोले शब्द है सो ब्रह्म है, शास्त्र कहे शब्द जो है सो ब्रह्म है, तो शब्द ब्रह्म की उपासना करूं क्योंकि वेद है वो भी शब्द ब्रह्म है। इस वास्ते जो कुछ कानों में सुनाई दे वो शब्द है, तो वह मैं ईश्वर की उपासना, बोले बहुत अच्छी बात। उसमें भी दो आपने भाव जावे, मन के अनुकूल जो शब्द है कोई आकर की स्तुति करे तो प्यारा लगे और कोई निंदा करे तो बुरा मालूम देवे, तो निंदा तो प्रतिकूल प्रकार से स्तुति अनुकूल, तो ये अनुकूलता प्रतिकूलता का भेद हो जावे, तो बोले तब तो एक प्रकार से ये उपासना ठीक नहीं भाई तुम्हारे, दोनों में संभावना चाहिए, कोई निंदा जैसी स्तुति, चाहे कोई निंदा करे और चाहे कोई स्तुति करे दोनों में संभावना, क्यों परमात्मा है तो निर्दोष है, सम है, निर्दोष नहीं समंग ब्रह्म तस्मात ब्रह्म नितिष्ठा, ब्रह्म सम और निर्दोष है, तो जिसकी समता में स्थिति उसकी ब्रह्म में स्थिति है, तो समता में स्थिति रहनी चाहिए। ये उपासना तो बहुत बढ़िया है, इस उपासना से भी पर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। तो इसमें तो क्या बतलाव है, हो जाता है तो होगा, तब तो गड़बड़ है मामला, फिर अनुकूल में तो होगी राग, प्रतिकूल होगा द्वेष, फिर अनुकूल में होगा हर्ष, प्रतिकूल में होगा शोक, तो हर शोक राग द्वेष घेर लेंगे, किसी पर पतन हो जाएगा। संबुद्धि होनी चाहिए, चाहे शब्द में ही ब्रह्म की उपासना, तो फिर क्या करें, तो बोलो सुनना बंद कर दो, देखना बंद कर, बिस्तर के वहां मन में कोई प्रकार को संकल्प आवे ना वो तो हर वक्त आवे ही है, बोले आवे तो बस संकल्प ने ब्रह्म को स्वरूप मान ले, फिर अपना संकल्प त्यागण को नहीं पड़े कि भी संकल्प आने छोड़ू, बोले नहीं संकल्प ही ब्रह्म है, मन की जो क्रिया है जी कहने ब्रह्म को रूप मान करके अपने मैं कोई ध्यान करे एकांत में बैठ करके करे, बोले सा परमात्मा को ध्यान करना, बोले संकल्प और आवे चित के मां, बोले संकल्प तो जानकारी करा दिन भर आता ही ना संकल्प, तो संकल्प होने से फिर एक प्रकार से मुझे कोई हद नहीं। अच्छा महात्माओं का बतलाया हुआ है संकल्प ने ब्रह्म समग्र की उपासना करे तो ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए, तो आपने संकल्प को त्याग तो करने में कठिनाई पड़ती, संकल्प ही थोड़े में तो कठिनाई है, और संकल्प में परमात्मा से कोई कठिनाई नहीं। बोले बड़ो सिद्ध वर्ष बहुत आदमी कहते हमारे कांत में बैठा हमारे संकल्प होता है, संकल्प आवर संकल्प आवे तो आनंद कोई आपत्ति नहीं, संकल्प आने ब्रह्म को स्वरूप मान करके संकल्प बैठा करो। ये क्या करो कि ब्रह्म को ध्यान करो, क्यों कर संकल्प ऐसा ब्रह्म है, तो बड़ो सिद्ध हो इससे भी ब्रह्म की प्राप्ति। किंतु उसमें संकल्प के भीतर के वहां दो भाग नहीं होना चाहिए, मन के अनुकूल संकल्प और विपरीत संकल्प। संकल्प मात्र ही जब भगवान को स्वरूप है तो फिर अनुकूल और प्रतिकूल क्या, उसमें ये भाव नहीं आना चाहिए कि ये संकल्प तो बढ़िया आया, ये संकल्प घटिया आया। जैसे घटिया बढ़िया होया, जैसे अनुकूल और प्रतिकूल होया, तो बस फिर तो राग द्वेष हर्ष को घेर लेगा। अनुकूल में राग होगी, प्रतिकूल के बाद द्वेष होगी, ऐसा संकल्प नहीं आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए। और अनुकूल आवेगा तो उसमें प्रसन्नता होगी, प्रतिकूल है उसमें दुख होगा। तो हर्ष शोक राग द्वेष यही तो विकार है, तो निर्विकार होना चाहिए। कोई भी प्रकार को हृदय में संकल्प हो, कोई भी प्रकार को संकल्प हो, बस लो भगवान को स्वरूप समझ कर बको, संकल्प को ही आपको ईश्वर मानकर ध्यान करे तो बेड़ा पार है। और उसके बीच के वहां भी जब दो बुद्धि होने लगे, एक अनुकूल एक प्रतिकूल, तो बोले तब ठीक हो नहीं, तो फिर क्या उपाय करना चाहिए। फिर श्वास जो आदमी ना है, ये तो हर वक्त आता ही रहे मरे जब तक, श्वास खत्म और आदमी खत्म। तो आने वाला जो जाने वाला श्वास है, माने पूरे रेचक हो, चाहे मैंने श्वास प्रश्वास कहो और चाहे मैंने प्राण अपान कहो, बाहर से भीतर जो श्वास जाओ उसको नाम तो प्राण है, तब भीतर से जो बाहर में श्वास आ रहा उसको नाम अपान है। दूसरी बात है, बाहर का श्वास भीतर जाओ बंगुनाओ तो पूरक है, और भीतर को श्वास बाहर में आओ बंगुनाओ रेचक है। तो उस प्राण वही ब्रह्म है, श्वास ही श्वास में ब्रह्म समझ करके उपासना करे तो ही बेड़ा पार हो जाए। जो कुछ एक प्रकार से श्वास आवे और जावे, ये तो जाता आता रहेगा, अब कोई ध्यान करे। अल्लाह ने ब्रह्म समझ कर ध्यान करे, बोले किसको ध्यान करते, बोले ब्रह्म को ध्यान करते, बोले ब्रह्म को ध्यान करते कोई, बोले महात्मा ने बताया कि प्राण है सुब्रह्म है, सुबह तो हर वक्त ये प्राण को ही ध्यान करो, श्वास आवे जाए जिकने ब्रह्म रूप मान करके मैं को ध्यान करूं, समझा। तो उसके बीच में दो बुद्धि नहीं होनी थी कि ये श्वास तो ठीक आवे, ये श्वास बेठीक आवे, ये तो अच्छे हुए ये खराब है, यह बुद्धि नहीं होनी थी कि ब्रह्म एक है और सम है, तो उसमें सम बुद्धि अभेद बुद्धि एक बुद्धि रहनी चाहिए, जहां दो बुद्धि हुई वहीं पता। तो शास्त्र की वेदों की आज्ञा है कि जो प्राणों की उपासना है, प्राणा ने ब्रह्म समझ करके उपासना करे तो उसकी विजय हो जाती। देवता लोगों की विजय प्राणों की उपासना से हुई थी, प्राण की उपासना करनी। जिस चीज में आपको सुविधा मालूम देवे उसी चीज की उपासना करे, उसमें ब्रह्म बुद्धि करके उपासना करे। किंतु ब्रह्म का लक्षण उसमें पूरा समझना चाहिए कि ब्रह्म जो है उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है, ब्रह्म के मां भेद बुद्धि नहीं है, एक है ब्रह्म, ब्रह्म नाना तो नहीं है, तो फिर बेड़ा पार हो जाए। नाना तो फालतू दिख है, नाना तो है ही नहीं, क्योंकि आप देखो कि ये कितना पदार्थ अपन भिन्न भिन्न दिखे, स्वप्न में कितना नाना प्रकार का पदार्थ दिखे, किंतु वह नाना प्रकार का पदार्थ नहीं है, ये खुद ही आप ही है, कोई संकल्प है, वो खुद ही संकल्प के रूप में है वो स्वप्न में, और दूसरी वस्तु वहां है ही नहीं। जागरण के बाद तो निर्णय भी हो जाएगा कि कोई दूसरी वस्तु स्वप्न में आई नहीं, वही था, सुपने के काल के मत तो नाना पदार्थ दिख रहे हैं। खैर सुपने की बात छोड़ो, प्रत्यक्ष ही देखो कि प्रत्यक्ष के बीच के वहां समझो कि यह मशीन है, यह बक्सा है, हमें चूड़ी है, ये पाटियो है, आप शरीर है, ये कपड़ा है, कितना प्रकार का पदार्थ एक प्रकार से आप नाम रूप अनेक दिख रहे, पर सबको इकट्ठा करके सबके आग लगा दो, आग लगाने से फिर क्या हो जाएगा, सब एक ही पदार्थ बन जाएगा, सबकी राख हो जाएगी, सब फिर क्या कहोगे, बोले राख है, एक रूप होगा ना, तो फिर मट्टी में मिल जाएगा, मट्टी में देखते देखते मिल जाओ ना, आप आज भी शमशाना में जला जाओ तो मट्टी में मिल जाएगी, इसी तरह से सब चीज मट्टी में मिल जाए तो मट्टी में क्यों मिलेगी, पहला स्वरूप मट्टी थी, मट्टी से ही सबकी उत्पत्ति हुई थी, ये बात तो मट्टी में सब मिल गई, मट्टी है सब, तो आप यह बात समझा, यो तत्व की बात है कि आप नाना रूप दिखता वहीं पर मट्टी माना, असली वृत्ति है, सोने का अनेक प्रकार का गणा, ज्यादा प्रकार का गणा है सोने का, मैंने सबने अपना सोनू ही माना, ये असली बुद्धि है, अरबे का जो नाम रूप जी का सब झूठा है, इसी प्रकार से ये सब पार्थिव पदार्थ है जी का समझो कि एक ही चीज है, इनका नाम रूप सब झूठ है, ये नाम रूप तो रहेगा नहीं, झूठी वस्तु कभी रह करती है क्या, तो सच्ची वस्तु न सच्ची न सच्ची समझने से कल्याण हुए, यथार्थ समझने से कल्याण हुए, मैं गुना हूं ज्ञान है, नहीं तो अज्ञान है भूल समझ, तो जैसे नाना प्रकार का पदार्थ पार्थिव पदार्थ नाना प्रकार का है, पूर्वापर के सोच से विचार कर देखने से सब मट्टी है, तो ये उदाहरण समझो कि आपने शास्त्र जी कि सोने का जितना जो आभूषण है वो सब सोनो ही है, और सोने ने जान सबको जान हुए, ऐसे परमात्मा से सब चीज पैदा हुई है, परमात्मा को ज्ञान होने से सबको ज्ञान हो जाए, तो इसलिए सब कुछ सब परमात्मा ही है, जैसे सोने का सारा ज्ञान सोनो ही है, ऐसे संसार का सारा पदार्थ है सो परमात्मा ही है, क्योंकि परमात्मा ही संसार के रूप में परिणित हुआ है, जैसे रात्रि के स्वप्न के आप ही स्वप्न के संसार में परिणित हुआ, इस तरह से भगवान इस रूप में आपने भया है, तो हर एक प्रकार के विचार से सोचने से जो मालूम हो जाए कि भी ठीक है बात, एक ही पकड़ाई जाए ठीक है बात, इन साधनों में कोई भी एक साधन कर लो जो आपके समझ में आ जाए, एक देशी सर्वदेशी, तो साधनों को उद्धार हो जाओ, कल्याण हो जाओ, माने सारा जो दुख है जिसका राग द्वेष ने लेकर अज्ञान ने लेकर, अज्ञान को नाश होना सही, कलेशों को नाश हो जाए, राग द्वेष को, इस सब जितना कलेश है जिसका अविद्या मूलक है, अविद्या माने अज्ञान, अविद्या स्मिता राग द्वेष अपंथ कलेश, अविद्या क्या है एक प्रकार से राग द्वेष और अविनिवेश, ये पांच कलेश है, अविद्या नाम अज्ञान को है, उस अज्ञान से ही अहंकार उत्पन्न हुए, अनात्म में आत्मिमान उत्पन्न हुए, सब अस्मिता माने जड़ चेतन की एकता, ये अस्मिता है, ये मूल अहंकार है, और उसमें ही रहने वाला है राग द्वेष, फिर राग पैदा हुए, अनुकूल के प्रतिकूल को भाव है, तो अनुकूल प्रतिकूलता में राग द्वेष, सुख में राग दुख में द्वेष, सुख अनुकूल है और दुख प्रतिकूल है, तो ये सब राग द्वेष उत्पन्न होने से फिर नाना प्रकार का विकार पैदा हुए, और अभिनिवेश जो है वो से फिर उत्पन्न हुए, अभिनिवेश नाम किसको है कि मरने के भय को नाम अभिनिवेश है, तो मरने को भय पैदा हुए प्रतिकूलता में, अविद्या से थी, वह चिंतन ग्रंथि माने जड़ चेतन की एकता, चेतन आत्मा और जड़ संसार इन दोनों की एकता, वह एकता रूप अहंकार के भीतर के मई राग पैदा हुए और राग के प्रतिकूल में द्वेष पैदा हो, द्वेष के प्रति प्रतिकूलता के मई भय पैदा हुए। तो इस प्रकार से सबको नाम कलेश है, दुख देने वाला होने से इसको नाम कलेश है और ये दुर्गुण है। ये सब अविद्या जनित है, ज्ञान जनित, और ज्ञान को नाश हुए ज्ञान से, और परमात्मा को ज्ञान होने से सबको नाश हो जाए। इनके नाश हो जाने से सारे दुखों को नाश हो जाते, कि दुखों को कारण यही दुर्गुणों को, दुर्गुण तो स्वरूप है ही, दुराचारों को कारण दुर्गुणी है। तो दुराचारों को, दुर्गुणों को, दुखों को, दुर्विष्टों को सबको नाश हो जावे, अतंत अभाव हो जावे, तब इनसे अपनी मुक्ति हुई। यही तो बंधन का हेतु है, तो जीव सब मुक्त हो जावे। रिश्ते भी बहुत अच्छा है। तो युरस्तु ज्ञान से ज्ञान की प्राप्ति का बहुत सा उपाय है। ज्ञानियों के संग से भी ज्ञान हो जाएगा, महात्माओं के संग से। भगवान गीता में तद विधि प्रणिपाते ने परिप्रश्ने ने सेविया उपदेश समिति दे ज्ञान ज्ञानी न तत्वदर्शी ने तत्मा ने उस ज्ञान को विधि माने तो जान। किस प्रकार से जानू, तो कैसे जानू, मैंने किन से जाऊं कि महात्मा उसने कैसे महात्मा कि ज्ञानी तत्वदर्शी का शास्त्र को भी ज्ञान हुआ, परमात्मा को भी ज्ञान हुआ। ऐसा जो ज्ञानी महात्मा जो पुरुष है उनके पास जाकर तुम ज्ञान ने सो जान उपदेश समिति से ज्ञान, वे तेरे प्रति ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो प्रकार जानने को पदविधि पढ़ी पाते ने परिप्रश्न सेविया शास्त्र उनको नमस्कार करके उनकी आज्ञा को पालन सेवा करके और उनके साथ में प्रश्नोत्तर रूप वार्तालाप करके की और तू उस ज्ञान को जान में ज्ञान आपको देवें। और दूसरा उपाय, ऐसा ज्ञानी महात्मा कोई नहीं भी है तो दूसरा कोई उपाय, बहुत उपाय दूसरा उपाय, दूसरा क्या है? पहला तो बताया निष्काम भाव से लोगों की सेवा करें, सब दुनिया को उपकार करें निस्वार्थ भाव से, स्वार्थ को त्याग करके सबको नारायण रूप समझ करके सबकी सेवा करें। नारायण नहीं समझे तो नारायण की प्रजा समझ कर सेवा करें, या नारायण सब में व्यापक है यूं समझ करके सबकी सेवा करें। कुछ भी समझ नहीं आ तो सबकी सेवा करे, प्राणी मात्र को पात्र समझ करके सेवा के लायक समझ करके सबकी सेवा करे, तो सेवा करने से भी ऐसा काम सिद्ध हो होनी चाहिए। निष्काम भाव से निस्वार्थ भाव से सेवा करे, उससे क्या हो जाएगा? उससे बोले आप ही ज्ञान हो, उसको ठीक है जो ज्ञान है वो आगे प्राप्त हो जाएगा। नहीं ज्ञान ही न सदृशन पवित्र निविद्यति तस्वंग योग संसित है कारण आत्म निबिंदती। संसार में ज्ञान के समान कोई पवित्र वस्तु नहीं है, और वह ज्ञान समय करके काल करके योग संसित हुआ पुरुष योग के द्वारा जो अंतकरण की सिद्धि रूप जो सिद्धि जिसकी हो गई है वो योग संसित पुरुष कहते हैं। ऐसा योग संसिद्ध पुरुष उस ज्ञान को अपनी आत्मा में अपने हृदय में स्वतः अपने आप ही पा लेता, उसके वास्ते कोई दूसरे की आवश्यकता ही नहीं है। ज्ञान आप ही हो जाता है जब अंतकरण शुद्ध हो जाता है, तो अंतकरण की शुद्धि निष्काम सेवा से निष्काम कर्म से हो जाती है। तो निष्काम सबकी सेवा करे इससे अंतकरण शुद्ध हो जाता है, फिर अंतकरण शुद्ध होने से ज्ञान आप ही प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और उपाय ये कि जो पता कि इसमें श्रद्धा हो जाए, कि भी परमात्मा है और परमात्मा मिला है और अपने भी मिल सके है, पर लोक है, परमात्मा है, महात्मा लोक है, शास्त्र सत्य है, शास्त्रों में, महात्माओं में, परलोक में, ईश्वर में, इनके वहां विश्वास करने से, श्रद्धा करने से ये आप ही बने ज्ञान दे दिए। खाली विश्वास करने की आवश्यकता है, क्योंकि श्रद्धा वहां लभते ज्ञान तत्व इंद्रिय ज्ञान लब्ध प्राण शांति मैत्रण आदि गच्छति। श्रद्धावान जो पुरुष है वो ज्ञान को प्राप्त होता है। तो श्रद्धा करने माने विश्वास करना, विश्वास करने से एक प्रकार से मेरे को असर पड़े आप, तो विश्वास कब समझो जावे कि ईश्वर में या महात्मा में या शास्त्रों में, तब समझ जावे कि उनकी आज्ञा को पालन होने लगे, उसकी आज्ञा के पालन पर तत्पर हो जावे, वो विश्वास समझ जावे। इस वास्ते साधन की तत्परता हो जावे, ये विश्वास की कसौटी है। ठीक है, तो फिर साधन की कसौटी क्या, जैसे विश्वास की कसौटी साधन, असाधन की कसौटी, साधन की कसौटी है संयत इंद्रिय, मन और इंद्रिया को संयम हो जावे। साधन करने से मन इंद्रिया को संयम अवश्य हो, जब मन इंद्रिया को संयम नहीं हुए तो साधन की कमी है, वो साधन तेजी से करो। तो श्रद्धा से ही साधन तेज होगा, साधन के तेज होने से मन इंद्रिया अपने आप ही बस हो जाएगा, और फिर बोले फिर श्रद्धा से अपने ज्ञान मिल जाओ, श्रद्धावान लगते ज्ञान, श्रद्धावान आप ही ज्ञान मिल जाओ, और किसी करो धरनो किसी नहीं, अलग कोई बात की जरूरत नहीं, कोई मनुष्य की कोई जरूरत नहीं, उपदेश देने वाले की और की किसी की या जरूरत को नहीं, कभी ज्ञान जाकर सीखो आप ही ज्ञान जैसी किस तरह जैसी, बोले श्रद्धा से, बोले श्रद्धा से ज्ञान कैसे होती, बोले श्रद्धा से थी साधन से साधन संत करो, शुद्ध से अंत करो, शुद्ध होने से ज्ञान आप ही जैसे, ज्ञान को पाकर फिर परम शांति मिल जाती तुरंत ही उसी वक्त, ज्ञान प्राण शांति मचरणादि ठीक। और ज्ञान को उपाय, और ज्ञान को उपाय ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की भक्ति करने से ज्ञान आप ही जैसे, तेषांग सतते युक्तानां भजतांग प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपयान्ति। जैसे ज्ञानी महात्मा को संग करने से वो ज्ञानी महात्मा बने ज्ञान दे देवे, ईश्वर की भक्ति करने से ईश्वर बने ज्ञान दे देवे, और सबकी निष्काम सेवा करना संत कर्म शुद्ध होकर आप ही ज्ञान हो जावे, तो तेषांग सतते युक्तानां भजतांग प्रीति जो तेषांग पुरुषाणां उन पुरुषों तेषांग सत्ययुक्तानां भजतांग पूर्व तेषांग माने पूर्व में जिन पुरुषों को प्रकरण आये हुए उन पुरुषों की बात चल रही है। पूर्व में क्या आयो, मच्चितामद गत प्राण बोध यंत्र प्रस्फुरण कथियंत से मांग नित्यं तुष्यन्ति चरमन्ति, तो तेषांग पुरुषाणां जिन पुरुषों का मेरे में हर वक्त चित्त है, भगवान की भक्ति को प्रकरण है, तो भगवान के अपने भक्तों की बात करे कि जिनको हर वक्त मेरे में चित्त है वो मत चित्ता, और मदगत प्राण, मदगत प्राण कौन है, मेरे लिए जीवन को धारण करने वाले और कोई प्रयोजन नहीं, मेरे वास्ते जिन्होंने अपना जीवन धारण कर रखे मदगत प्राण, और वो जीवन से परस्पर परस्पर के वहां मेरे तत्व रहस्य को जानने के लिए चर्चा करते रहते हैं, बोध यंत्र परस्पर, और कथियंत से मांग नित्यम, और मेरे ही गुण प्रभाव तत्व रहस्य की बातों कथन करते रहते हैं, और इसी से थी संतोष लाभ करते, ऋषि में रमण करते, ऐसे जो पुरुष है उन प्रत्येक देश सत्य जुड़ता, उन नित्य निरंतर मेरे में लगे हुए पुरुषों को प्रीति पूर्वक बजने वाले उन पुरुषों को मैं बुद्धि योग देता हूँ, यानी ज्ञान देता हूँ। जिस ज्ञान से मेरी प्राप्ति हो जाती है, और उसके हृदय में स्थित जो अज्ञान है, उस अज्ञान को मैं ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा एकदम नाश कर दूंगा। ऐसा मैंने ज्ञान दूंगा जिसके अज्ञान को एकदम नाश हो जावे, तो ज्ञान स्वयं भगवान दे दे उसको। तो ज्ञान होने से अज्ञान को नाश हो जावे, और अज्ञान को नाश होने से सब दुर्गुणा को, सब दुराचारा को, दुर्विषणा को, एक प्रकार से दुखा को अतंत हवा, फिर सबसे छुट गए मुक्ति होगी। और सबसे छुट गए और छुटने के बाद के बीच में परमात्मा की प्राप्ति, उसे ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति हो जावे, ज्ञान से दुख की निवृत्ति हो जावे, ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति हो जावे, तब परमात्मा की प्राप्ति है सुपरम शांति परमानंद स्वरूप है। तो फिर सदा के वास्ते बने समझो कि परम शांति परमानंद की प्राप्ति हो जाए। नारायण नारायण।